या अखबार का यही फर्ज होता है कि हर एक रिवायत बगैर तफ्तीश और तनकीद के शाया कर दी जाए। हमें तो कुछ अंग्रेजी कानून का हाल मालूम नहीं। अगर गवर्नमेंट ने अपने कानून में अखबार नवीसों को यह इजाजत दे रखी है कि ऐसे बेअसल झूठ जिनसे दिलों को आजार और सदमा पहुंचता है बेधड़क शाया कर दिया करे, तब तो कोई चूनो चरा की जगह नहीं। वरना गवर्नमेंट पब्लिक परेशान करेगी अगर ऐसे गंदे और नापाक और दिल आजार झूठों के शाया करने की वजह से पैसा अखबार से बाजपुश्त करे और ऐसी झूठी मौतों का उससे सबूत तलब करे और कानून की हद तक उसको पूरी सजा का मजा चिखावे। और का मुकाम है कि एक तो वाकई तौर पर मुल्क में ताउन ने तशवीश फैला रखी है और दूसरे इस झूठी ताउन के शाया करने का पैसा अखबार ने ठेका ले लिया है। फिर अगर ऐसी सूरत में यह गवर्नमेंट जो रियाया की हमदर्द है ऐसे खुले खुले झूठ के वक्त में जिसका नहायत दिलेरी से इर्तकाब किया गया है ऐसे मुंह फटे इंसान से मुआवजा न करे तो न मालूम दरों गोई में किस हद तक उस शख्स का हाल पहुंच जाएगा और किन किन दिलों को बेवजह दुखाएगा। हुनूज इब्तदाई हालत है, थोड़ी सजा से भी मुतनब्बे हो सकता है। बस कम से कम दरों गोई की यह सजा है कि बिला तवक्कुफ उसकी ये अखबार बंद कर दी जाए या अलावा उसके और कोई मुनासिब सजा दी जावे। और अगर गवर्नमेंट को इस हमारी तहरीर में शुबा हो तो अपने किसी अफसर को कादियान में भेजकर तहकीक और तफ्तीश कर लें कि क्या यह तहरीर वाकई है या गैर वाकई। बदकिस्मत एडिटर ने इस गंदे झूठ से खुद अपने तई पब्लिक के सामने और नीज गवर्नमेंट के सामने एक दरोगो और मुफ्तरी साबित कर दिया है। अफसोस तो यह है कि इस झूठ से उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि असल मतलब इस दरोगोई से उसका यह था कि ताकि इस बात को साबित करे कि गोया हमने अपने रिसाला दाफियुल बला में यह लिखा है कि कादियान में ताउन हरगिज नहीं आएगी और ताउन आ गई। काश अगर वो रिसाला दाफियुल बला को जरा गौर से पढ़ लेता और उसके सफा पांच के हाशिया को देख लेता जिसको हमने इस रिसाला में नकल कर दिया है तो इस दरोगोई की लानत से बच जाता। उसका यह उधर सही नहीं होगा कि बदबख्त शरीरों और झूठों ने कादियान से मुझे खबर दी इसलिए मैंने झूठ को शाया कर दिया, क्योंकि शाया करने का जिम्मेदार वो है ना कोई और शख्स बल्कि उसने तो साथ ही दूसरे चंद अखबारों को भी आलूदा किया। उसको खूब मालूम था कि कादियान के आरिया उस वक्त से जबकि लेखराम के हक में पेशगोई पूरी हुई दिल से इस सिलसिले के साथ इनाद रखते हैं और बाद दूसरे मजहब भी उनके हमरंग हैं। फिर वो क्यों कर ऐसे अमीन ठहर सकते हैं कि उनके बयान की तहकीक जरूरी नहीं। और वही हमारा पैसा अखबार इस बात को भी मख्फी नहीं रख सकता कि वो आदम के सांप की तरह इस सिलसिला का पुराना दुश्मन मुआनिद है। बस इसमें क्या शक है कि उसी इनाद की वजह से ये अंबार झूठ का उसने अपने अखबार में दर्ज कर दिया है। फिर इसी पर्चे में वो लिखता है कि मौला चौकीदार की बीवी भी ताउन से फौत हो गई हालांकि वो इस वक्त तक कादियान में जिंदा मौजूद है। हर एक शख्स सोच ले कि इस शख्स ने क्या वतीरा इख्तियार कर रखा है, जिंदों को मार रहा है। क्या एक एडिटर अखबार की कलम से ऐसे खतरनाक झूठ छाया होना और दिलों को आजार पहुंचाना मुजबे नक्ज अमन नहीं है। जिस शख्स के अखबार के हर हफ्ते में हजारों पर्चे छाया होते हैं प्रयास करने की जगह है कि वो किस कदर खिलाफ वाकया मातम की खबरों से बेगुनाह दिलों को दुख दे रहा है और दुनिया में बेअमनी फैला रहा है। एक तो आसमान से इंसानों पर वाकई मुसीबत है, अब दूसरी मुसीबत यह पैदा हो गई है कि पैसा अखबार के जरिए से मुल्क में फैलती जाती है। ना मालूम इस मुल्क के लोग ऐसे गंदे अखबार से क्या फायदा उठाते हैं और कुछ मालूम नहीं होता कि क्यों गवर्नमेंट आलिया इस मूजी अखबार के बंद करने में तवक्कुफ कर रही है, क्योंकि एक गंदे अखबार का बंद होना लाखों दिलों को आजार पहुंचने से बेहतर। दूसरा तरीक इफ्तरा का जो पैसा अखबार ने इख्तियार किया है वो ये है कि सिर्फ फर्जी नाम लिखकर जाहिर करता है कि ये लोग कादियान में ताउन से मरे हैं, हालांकि इन नामों का कोई इंसान कादियान में नहीं मरा। मसलन वो लिखता है कि मुसम्मा मौला की लड़की ताउन से मरी है, हालांकि मौला मजकूर के घर में कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। ऐसा ही वो लिखता है कि एक सदरू बाफिंदा ताउन से मरा है, हालांकि इस गांव में सदरू नाम कोई बाफिंदा ही नहीं क्योंकि ताउन से मर गया हो। ना मालूम उसको ये क्या सूझी कि फर्जी तौर पर नाम लिखकर उनको ताउनी अमवात में दाखिल कर दिया। शायद इसलिए ऐसा किया गया कि ताकि कुछ पता ना चल सके और जाहिल लोग समझ लें कि जरूर इन नामों के कोई लोग होंगे जो मरे होंगे। तीसरा तरीक इफ्तरा का जो पैसा अखबार ने इख्तियार किया है वो ये है कि बाज आदमी फिल हकीकत मरे तो हैं मगर वो किसी और हादसा से मरे हैं ना ताउन से, और उसने महज चालाकी और शरारत से ताउन की अमवात में दाखिल कर दिया है। मसलन वो अपने अखबार में बुढ़ा तेली के लड़के की नस्बत लिखता है कि वो ताउन से मरा है, हालांकि तमाम गांव जानता है कि वो दीवाना कुत्ते के काटने से मरा था और जैसा कि मामूल है सरकारी तौर पर उसकी मौत का नक्शा तैयार किया गया और कुत्ते के काटने की तारीख वगैरह उसमें लिखी गई پھر یہ کیسی پیسہ اخبار کی ایمانداری ہے کہ ایسے جھوٹوں کو جن سے گورنمنٹ پر بھی حملہ ہے اپنے اخبار میں شائع کیا، گویا گورنمنٹ نے اپنے ملازموں کے ذریعے سے عمدن تعاون کے کیس کو چھپایا اور اپنے نقشوں میں دیوانہ کتے سے مرنا درج کیا، مگر پیسہ اخبار نے گورنمنٹ کا یہ جھوٹ پکڑ لیا۔ بس جبکہ پیسہ اخبار کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ برادھڑک گورنمنٹ کے تحقیق کردہ امور کے برخلاف جھوٹ بولتا ہے، تو کس قدر وجود اس کا خطرناک ہے۔ ایڈیٹروں کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ سچائی کو دنیا میں پھیلاویں نہ جھوٹ کو۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے گندے اور ناپاک اخبار دنیا کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچاتے ہیں، اور جھوٹ جو ایک نہایت پلیز اور ناپاک چیز ہے اس کو دنیا میں رائج کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری مخالفت کے جوش میں کہاں تک یہ شخص جھوٹ سے کام لے گا اور کس قدر فرضی طور پر نامردہ لوگوں کو تعاون سے مارے گا۔ اسی اختراع کی قسم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نتھو چوکیدار کی موت کو بھی تعاون سے لکھتا ہے، حالانکہ ایک عرصہ ہوا کہ وہ غریب کچھ مدت تب سے بیمار رہ کر بقضاء الہی فوت ہوا ہے، چنانچہ سرکاری کتاب میں اس کی موت اور مولا چوکیدار کی موت کا باعث بخار ہی لکھا ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ سرکار میں جھوٹی خبر دی گئی؟ ہاں اس میں شک نہیں کہ جیسا کہ ہمیشہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، قادیان میں بھی بخار رہا ہے، اور اندازہ کیا گیا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو بخار ہوا ہوگا، اور خود ایک دو دن مجھے اور ہمارے بچوں کو بھی بخار ہوا، مدرسہ کے بعد لوگوں کو بھی بخار ہوا، اور عام طور پر گاؤں میں بہتوں کو بخار ہوا۔ اسی کثرت بخار کے سلسلے میں چند آدمی بخار سے فوت بھی ہو گئے، جن میں سے بعض چند ماہ کے بیمار تھے اور بعض تپ محرقہ سے فوت ہوئے، اور جہاں تک ہمیں علم ہے ایسے آدمی 2 یا 3 سے زیادہ نہیں، جو قریباً 100 آدمی میں سے جو مبتلا بخار تھے جانبر نہ ہو سکے۔ اب کیا اس کو تعاون کہنا چاہیے؟ یا یہ شرم ہے؟ یا گرمی کے موسم میں اس سے پہلے کبھی بخار نہیں ہوئے، بلکہ بعض برسوں میں جبکہ تعاون کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا، اسی موسم میں اسی گاؤں قادیان میں بعض لوگ تپ محرقہ سے 30-30 کے قریب مر گئے تھے۔ اب تو خدا کا فضل ہے موت بہت کم ہے، غرض یہ معمولی وبائیں ہیں جو اس موسم میں آتی ہیں، اور جاہل لوگ جن کو فن طبابت کی کچھ بھی خبر نہیں ہر ایک بیماری کو ناحق تعاون بنا دیتے ہیں، اور ایسے ایڈیٹر جو اجہل الجہلاء ہیں وہ جاہلوں کی باتوں کو ایسا قبول کر لیتے ہیں کہ گویا ایک بڑے اور تجربہ کار ڈاکٹر نے ان کو خبر دی، حالانکہ تعاون کی مرض ایسی ہے کہ اس کی تشخیص کرنے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل بھی چکر کھا جاتی ہے۔ عجیب تر یہ ہے کہ بعض وقت بیماروں کو پھوڑے نکلتے ہیں پھر بھی وہ تعاون نہیں ہوتی، یہ عمر بڑا مشکل عمر ہے۔ گزشتہ دنوں میں مشہور ہوا تھا کہ دہلی میں تعاون پھوٹ پڑی، لیکن تحقیقات کے بعد یہی ثابت ہوا کہ وہ ایک قسم کے محرقہ تپ ہیں نہ تعاون۔ اور خود تعاونیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وبائی اور ایک غیر وبائی۔ وبائی وہ ہوتی ہیں جو جل جل پھیلتی ہیں اور متعدی ہوتی ہیں، اور موتیں تیز قدم کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں، اور غیر وبائی تعاونیں خوفناک طور پر نہیں پھیلتی، وہ زہرناک پھنسیاں ہیں جو کبھی کان میں نکلتی ہیں اور کبھی ہتھیلی میں، کبھی چھاتی پر اور کبھی ناک پر، اور کبھی کان کے پیچھے اور کبھی لب پر، اور کبھی کسی انگلی پر اور کبھی کسی اور حصہ بدن پر۔ یہ سب تعاونیں ہیں، اگر یہ انسانوں میں زور کے ساتھ نہ پھیلیں اور کثرت موت کا موجب نہ ہو تو اس وقت تک یہ وبائی تعاون نہیں کہلاتی۔ غرض اس مرض کی تشخیص بہت مشکل ہے، اور خود بڑے بڑے طبیب اس میں غلطیاں کھا سکتے ہیں۔ یہ جائے کہ جاہل بازاری جو اس کوچے سے محض ناواقف اور انسانیت سے بہت ہی تھوڑا حصہ رکھتے ہیں۔ اس مرض میں ایک اور خاصیت یہ ہے کہ تیزی کے زمانہ میں جب کہ موتوں کا گرم بازار ہوتا ہے، ہولناک حملے اس کے ہوتے ہیں، پھر جب موسم کی تبدیلی سے اور یا اندرونی اسباب سے جن کا انسانوں کو پورا علم نہیں اس کی تیزی کم ہوتی جاتی ہے، تو بعض انسانوں پر اس کا ایسا اثر خفیف ہوتا ہے کہ اس کا پھوڑا ایک معمولی پھوڑا اور اس کا تپ ایک معمولی تپ ہوتا ہے، اور درحقیقت اس حالت کا نام تعاون نہیں بلکہ وہ زہریلی مرض ایک معمولی مرض کی طرف منتقل ہو جاتی۔ اب ہم نصیحتاً لکھتے ہیں کہ آئندہ پیسہ اخبار ایسے افتراؤں قابل شرم جھوٹوں سے باز آ جائے، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جھوٹ ہمیشہ اس کو ہضم ہو سکے۔ افسوس کے بعد امرتسر کے سفلہ توا بھی اپنے اشتہاروں میں پیسہ اخبار کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ بعض نے یہاں تک جھوٹ بولا ہے کہ گویا ہماری جماعت میں ہی تعاون پھوٹ پڑی ہے، اور گویا قادیان میں وہ تعاون پیدا ہو گئی ہے جو تعاون جارف کہلاتی ہے۔ ان کے جواب میں بزرگ اس کے ہم کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی القادمین۔ وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی یہی قدیم سنت ہے کہ جس گاؤں یا شہر میں خدا کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے وہ جگہ نسبتی طور پر دارالامن ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ بے حواس اور دیوانہ کرنے والی تباہی نہیں پڑتی जिसमें लोग परवानों की तरह मरते हैं, वहां मौत का दरवाजा भी बंद नहीं होता। यही वजह है कि बावजूद है कि मक्का मौजमा और मदीना मुनव्वरा के दारुल अमान होने में बहुत सी हदीसें आई हैं और कुरान करीम ने भी इसकी तस्दीक की है, मगर फिर भी बाज़ औकात इंसानी बर्दाश्त तक मक्का मौजमा में हैजा फूट पड़ता है और ऐसा ही मदीना मुनव्वरा में भी कई वारदातें हो जाती हैं। मगर इन वारदातों से इन दोनों हरमैन शरीफैन के दारुल अमन होने में फर्क नहीं आता। इसी तरह हमें इससे इनकार नहीं कि कादियान में भी कभी वबा पड़े या किसी मामूली हद तक ताउन से जानों का नुकसान हो, लेकिन यह हरगिज नहीं होगा कि जैसा कि कादियान के इर्द गिर्द तबाही हुई, यहां तक कि बाज़ गांव मौत की वजह से खाली हो गए, यही हालत कादियान पर भी आ गई। क्योंकि वो खुदा जो कादिर खुदा है अपने पाक कलाम में वादा कर चुका है जो कादियान में तबाह करने वाली ताउन नहीं पड़ेगी, जैसा कि उसने फरमाया लौल अल इकराम लहलक अल मुकाम, यानी अगर मुझे तुम्हारी इज्जत जाहिर करना मलहूज ना होता तो मैं इस मुकाम यानी कादियान को ताउन से फना कर देता। यानी इस गांव में भी बड़े बड़े खबीस और शरीर और नापाक तबाह और कजाब और मुफ्तरी रहते हैं और वो इस लायक थे कि कहे इलाही सबको हिलाक कर दे, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि दरमियान में तुम्हारा वजूद बतौर शफी के है और तुम्हारा इकराम मुझे मंजूर है, इसलिए मैं इस मरतबा सजा से दरगुजर करता हूँ कि एक खौफनाक तबाही और मौत इन लोगों पर ढाल दूं, ताहम बकुल्ली बेसजा नहीं छोड़ूंगा और किसी हद तक वो भी अजाब ताउन में से हिस्सा लेंगे ता शरीरों की आंखें खुले। माँ सिवाय इसके अगर कादियान में ऐसी ताउन आवे जैसा कि गिर्द नवाह में बाज जगह ये सूरतें पैदा हुई कि देहात में सदा लोग मरे और कई देहात तबाह हो गए और बहुत से घर ऐसे हो गए कि बुजुर्ग शीर खार बच्चों के उनमें कोई भी न रहा, तो इस सूरत में जाहिर है कि ये जमात जो कादियान में बैठी है वो सब माँ उनके इमाम के तबाह होंगे और सब ताउन से मरेंगे और ये खुदा को मंजूर नहीं, क्योंकि ये उसकी कौम है जो उसने तैयार की है और ये जो भेजा गया है ये उसके हाथ का पौधा लगाया हुआ है, बस क्यों कर वो अपने बाग को खुद काट देवे जो उसने अपने हाथ से लगाया है। बस इसलिए और इसी गरज से तमाम गांवों को तख़फीफ़े अदाब की रियायत दी गई है। ये ऐसी ही मिसाल है कि मसलन एक जहाज में एक खुदा का बरगजीदा सवार हो ता वो किसी मुल्क में जाकर तबलीग करे और इस हालत में समंदर में तूफान आवे, बस सुनतुल्ला के मुआफिक ये जरूरी अमर है कि इस जहाज में बहुत से ऐसे लोग सवार हों जो गर्क करने के लायक हों मगर वो इस शख्स के लिए गर्क नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनके गर्क होने से इस बरगुजीदा पर भी सदमा आता है और ये खुदा को मंजूर नहीं। याद रहे कि मामूली हद तक मौतें एक महफूज जहाज में भी हो जाती हैं, मगर वो जहाज के मुसाफिरों की बेअमनी को इस हद तक नहीं पहुंचाती कि वो बेहवास होकर जहाज पर से कूद पड़े और सब एक जबान से हाय वाय के नारे निकालें, मगर ये खौफनाक मौतें जो जहाज किसी ठोकर से एक दफा टुकड़े टुकड़े हो जाए और उसमें बैठने वाले यकबारगी पानी में बह जाएं और समंदर की लहरें उनको ढांक लें, यह अजीम हादसा है और ऐसा मोहलिक हादसा कभी इस हालत में नहीं होता जबकि ऐसे जहाज में खुदा का कोई नबी और रसूल और बरगजीदा बैठा हो, बल्कि उसके तफैल और उसकी शफात से दूसरे लोग भी किनारों पर सलामत पहुंचाए जाते हैं। ता खुदा का एक कामिल बंदा जो खुदा के जलाल के लिए सफर कर रहा है उस तशवीश और तबाही में शरीक ना हो और ता वो काम मुअत्तल ना रह जाए जिस काम के लिए उसने सफर किया है। इसी सुनतुल्लाह के मुआफिक कादियान के लिए इन्नहु अबल करियता का इल्हाम साजर हुआ ता खुदा के कामों में हलज ना हो, वरना कादियान सबसे पहले फना करने के लायक थी क्योंकि ये लोग नजदीक होकर फिर दूर हैं और बहुतों का खुदा पर ईमान नहीं और ना चाहते हैं कि अपना नापाक चोला उतार कर हक को कबूल करें। गरज ये सुन्नतुल्लाह है कि जिस गांव या शहर में खुदा का कोई फरिश्ता नाजिल हो तो वो गांव या शहर ना तो ताउन से तबाह और हिलाक होता है और ना किसी और वबा से और ना किसी आतिशफशां पहाड़ से हिलाक किया जाता है। हाँ, मामूली मौतें खा ताउन से हों, खा हैजा से, खा किसी और सबब से, वो सब इंसानी बर्दाश्त की हद तक उसमें हो सकती हैं क्योंकि वो उस मामूर की कार्रवाई की हारिज नहीं है। बस जिस इल्हाम को हमने कादियान के बारे में शाया किया है उसका यही मतलब है, इससे ज्यादा नहीं। बाज आदमी ये इतराज पेश करते हैं कि मसीह माऊद के वक्त में अमन और आसाइश का जमाना होना चाहिए था, ना कि ताउन मुल्क में फैले और कहत पड़े और तरह तरह के असबाब से कसरत मौत हो। नौहा में बातला का ये जवाब है कि इंसान का इख्तियार नहीं है कि अपनी तरफ से हुक्म चलावे, यूं होना चाहिए था और इस तरह होना चाहिए था। खुदा ताला की किताबों में बहुत तसली से ये बयान किया गया है कि मसीह माऊद के जमाना में जरूर ताउन पड़ेगी और इस मरी का इंजील में भी जिक्र है और कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाता है वही मिन करियत नहन मोहल कुहा अब लयोमिल क़यामत और मुअज़्ज़िबुहा, علق، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم کچھ مدت پہلے قیامت سے، یعنی آخری زمانہ میں جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، ہلاک نہ کر دیں یا عذاب میں مبتلا نہ کریں۔